जब हम दीदी मनमोहिनी को याद करते हैं तो बहुत सुंदर मेमोरीज सामने आती है, क्योंकि ये मेरा भाग्य था कि दीदी के साथ हमने बहुत पालना भी ली, समय भी बिताया, बहुत कुछ सीखने को भी मिला।
दीदी मनमोहिनी जी से मेरा 1953 में मिलना हुआ, उस समय तो सिर्फ दीदी से मुलाकात ही हुआ, मेरी छोटी आयु थी तो दीदी ने मेरे को देखा, उनकी दिव्यता, उनका सरल स्वभाव और बहुत रमणीक स्वभाव से मैं बहुत प्रभावित हुई।
बाबा के अवैध होने के बाद दीदी यज्ञ को संभालती थी। दीदी की विशेषता पंक्चुअल और रेगुलर थी।
आदरणीय दीदी मनमोहिनी जी के साथ मेरा बहुत ही नजदीक का संबंध रहा। बहुत बार मधुबन में जब मेरे का आने का चांस होता था तो भी कई बार मुझे ऐसे बात करती थी कि जैसे हर कदम पर उनसे सीखने को मिलता था, और वाणी द्वारा भी कुछ ऐसी ऐसी महावाक्य उच्चारण करती थी कि मैं कहती थी आप तुम्हारी सचमुच बड़ी दीदी हैं।
तो ऐसे है कि दीदी जी की जो जीवन कहानी है वो मोस्टली मेरे से ही जैसे शुरू होती है। मेरी मौसी की भतीजी थी,
अधिकतर तो हम सभी जब मधुबन आते हैं तो अपनी डायरी पेन साथ में रखते हैं, तो अगर डायरी पेन मत आना सिर्फ तुम आना। तो मैंने सोचा मालूम नहीं मुझे क्या करना है, पर तो इतना सरल स्वभाव से कहा कि मैं तैयार होकर के आ गई कि मुझे निमंत्रण मिला है, कुछ अच्छी बात करनी होगी। मुझे कहा बैठो, आज सवेरे से तुमने जितनी भी क्लास की है, मुरली सुनी है, 10 बजे जैसे अभी क्लास चलती है, कुछ कुछ मेन पॉइंट सुनो। तो पहले दिन तुम्हें डायरी लेकर के गई का डायरी मत खोलो। तो मैं उन्हें इस प्रकार से सुनाती थी जैसे कि मैं टीचर के रूप में नहीं, परंतु वो मेरी परीक्षा ले रही है ऐसे भी नहीं, फिर तो एक स्नेह रूप में। तो पूरा उनका जो आंखें दृष्टि रहती थी वो मेरे ऊपर ही रहती थी, और जब मैं उठती थी तो बहुत प्यार से कहती थी बहुत अच्छा किया।
ओम शांति। देखो ओम शांति का महामंत्र बोले हमको प्यारे बाप दादा की महावाक्य याद दिलाते हैं, तो अकाल तख्त पर विराजमान हो जाओ, अपनी स्वधर्म की सीट पकड़ लो, तू जैसी रही वृत्ति वैसी रहेंगी दृष्टि, वैसी रहेंगी अवस्था। बोलो तो प्यारे बाप दादा के मीठे मीठे चेतन फूलों ऐसी समझ रही है, तो आज के जैसे हम चेतन फूलों के बगीचे का सैर कर रहे हैं, सामने हरियाली देखी बड़ी दिल खुश होती है, भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों की सुगंध आ रही है। तो ऐसी नहीं सिर्फ बोल बोलते हैं, परंतु ऐसी महसूसता आ रही है जैसे प्यारे बाप दादा के डायरेक्ट दिए जन्म ले, दिए गुण धारण करके अभी दिए सत्य।
प्यार से सबको चलाया, सबके प्यार से पालना की, सबको खुश करने की आर्ट भी अच्छा ही था, हंसाती बहलाती सबको थी, सब उनसे खुश थे, डरते भी सब थे कि हम ऐसा कर्म न करें जो दीदी को कहना पड़े।
ये अक्टूबर 68 की बात है, तो उस समय तो मुझे दीदी की सिर्फ दूर से पहचान थी, कई बारी मिले थे मधुबन में परंतु इतनी पहचान नहीं थी। परंतु हम लोग रात्रि के समय ही नीचे आए आबू रोड पर, उस समय तो अपना स्थान नहीं था आबू रोड पर, तो वेटिंग रूम में ही हम बैठे रहे। जो रात्रि की ट्रेन आबू से जयपुर अभी तक भी जाती है तो उन दिनों की बात है, तो उसके लिए हम इंतजार कर रहे थे। तो दीदी ने इतना प्यार से अपने जीवन का अनुभव बैठ करके सुनाया, मैं सोचती थी दीदी थकी हुई होंगी और दीदी को जरूरत नहीं है जो एक के लिए बैठ करके इतना अपना एनर्जी खर्च करे, परंतु दीदी ने इतना प्यार से बैठ करके सारा कुछ बताया, जैसे कि दीदी को बिल्कुल कोई बात का संकल्प नहीं है, तो वो सतगुरु किस तरह से एक बल एक भरोसा बाबा का पाठ है, अपनी जैसे कि सारी जीवन कहानी एक डेढ़ घंटे में बैठ के बताई। तो उस समय ही मेरे दिल को तो जीत लिया कि इतनी बड़ी महान विभूति और वो इतना फिर मेरे ऊपर इतना ध्यान रखे, ये एक विशेष अनुभव की बात थी।
दीदी ने जो कहा, जिस तरह से कहा, तो एकदम से आत्मा में वो उमंग उत्साह आ जाता है। और दीदी जी का जो बाबा पर, ड्रामा पर, बाबा की शिक्षाओं पर उनका जो दृढ़ निश्चय था, वो हम सब के लिए जैसे कि हमेशा साहस का काम करता था। तो कोई भी बात आती थी विशेषकर सेवा के लिए, तो दीदी जी हमेशा यही कहती थी कि बाबा ने जो कुछ कहा है कोई भी ऐसी सेवा रहनी नहीं चाहिए, तो लिस्ट बनाओ और देखो कौन सी ऐसी सेवा रहती है जो अभी तक नहीं की है। तो हम देखते थे कि दीदी जी का अपना व्यक्तिगत जीवन तो आध्यात्मिक था ही, परंतु सेवा के प्रति दीदी जी को बहुत बहुत उमंग उत्साह रहता था। और एक बहुत अच्छी बात दीदी जी में थी कि वो हमसे आयु में बड़ी थी, आध्यात्मिक आयु में भी बड़ी थी, पर वो हमेशा ये कहती थी कि तुम मेरी फ्रेंड हो, मैं जो तुमको बताऊंगी वो फ्रेंड की तरह से बताऊंगी, तुमको अच्छी लगे तो तुम स्वीकार करो, और तुमको ऐसा लगे कि नहीं ये मैं राय नहीं स्वीकार करना चाहती, तुम्हारी इच्छा है, तो वो जिस तरह से हमको शिक्षा देती थी वो तरीका उनका इतना अच्छा होता था कि ऐसा लगता था और दिल से हम कहते थे दीदी थैंक यू।
जैसे हमको ऐसे दिखाती थी कि वो मेरी सखियां और मेरे साथ साथ तुम चलो को शरत में भी, जैसे हमको बाबा कई बार कहते हैं ना कि कदम में कदम मिला के चलो, श्रीमत पर कदम कदम पर चलो, तो बिल्कुल वही शिक्षाएं हमें देती थी। पत्र व्यवहार भी उनके साथ होता रहता था, तो मुझे कहती थी तुमने तो देखो जो पत्र लिखती हो वो सीखना चाहिए, यानी हर प्रकार की कला। तो मैंने कहा कि आप बताइए, तो कहा जो तुम पत्र शुरू करती हो ना, तो जो बाबा ने आज सतगुरुवार के दिन मुरली चलाई उन शब्दों से तुम पत्र शुरू किया करो। अगर तुम शुक्रवार को लिखती हो तो जो आज की मुरली तुमने सुनी है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यानी कभी भी हम सिर्फ याद प्यार के पत्र नहीं, परंतु आज बाबा ने क्या सुनाया, इन महावाक्यों से पत्र शुरू करते थे। और जब पत्र का अंत करना होता था तो वह भी जैसे, यानी मेरे कहने का मतलब क्या है कि वो मुझे सखी के रूप में देखती थी, पर तुम्हें उन्हें एक आदर्श माँ के रूप में, टीचर के रूप में और दीदी के रूप में देखती थी।
तो बाबा के सत्संग में वो ऐसी अट्रैक्ट हो गई, वो रोज कैसे न कैसे बहाने करके भी बाबा के छोटे से सत्संग में आती थी। तो ये बड़ी बड़े बेटे की बच्चियां थी, एक दीदी थी और दीदी की बहन थी और दो भाई थे, तो दीदी का मेरे साथ बहुत कनेक्शन था, बहुत प्यार था मेरे साथ, तो मेरे को बहुत प्यार भी करती थी और मेरे को अपने साथ लेके जाती थी ओम मंडली में।
ये है 1982 की बात। तो दीदी के सामने, मैं सातवीं न्यूयॉर्क में थी, तो दीदी के सामने एक माता आई, तो माता ने कुछ इस प्रकार का प्रश्न पूछा कि मैं समर्पण हो जाऊं। तो दीदी एक सेकंड शांत रही। जब भी कोई आत्मा का प्रश्न आता है दीदी के सामने, दीदी अपनी बुद्धि से नहीं उसको उत्तर देती है। दीदी के सामने उस समय बाबा का पूर्व में जिस प्रकार से दीदी अंग संग बाबा के साथ ही रही थी मम्मा के अव्यक्त होने के बाद, ये बात बाबा के सामने आती रही। तो बाबा ने उस समय उस बात पर क्या कहा, तो दीदी कहती थी कि जब मैं इस प्रकार से अपनी बुद्धि को देखती हूँ और उस आत्मा को जरूर उस बात से संतुष्टता होती, तो ये मुझे दीदी की नम्रता परंतु बाबा के साथ इतना अटूट स्नेह कि बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात दीदी ने किस तरह से बाबा को सामने रख करके साथी बना करके इतनी सेवाएं की और अपनी बुद्धि को इतना दिव्य बनाया जो दो को बाप समान, दिव्य बुद्धि परंतु साथ साथ समर्पण बुद्धि। बाबा क्या कहते, बाबा क्या करते, सदा दीदी का यही संकल्प रहा।
मुझे याद है कि हर मंगलवार को दीदी हमको कहती थी बाबा को पत्र लिखना है, रोज का पूरे सप्ताह का पूरा समाचार देना है, और फिर शुक्रवार के दिन भी बाबा को पत्र लिखो। दो बार दीदी हमको सिखाती थी कि बाबा को सारा समाचार दो, अपनी दिनचर्या का, सेवा का, और उसके अलावा भी जो कुछ भी जिस तरह से भी यज्ञ के सहयोगी बन सके यज्ञ को हमेशा सामने रखो। तो मैं तो अपने जीवन में ये बाबा की समीपता और यज्ञ की समीपता के लिए दिल से दीदी जी का बहुत बहुत आभार भी मानती हूँ। बहुत मुझे वो सुंदर स्मृति भी आती है, और मैं समझती हूँ कि उनका जो कार्य चलाने का तरीका था उसमें नम्रता और मिठास बहुत था, क्योंकि उनकी मधुरता और उनकी नम्रता से उनकी बात को मानना बहुत सहज हो जाता था। तो इस एक तरफ दीदी अपनी दृढ़ता, या ये कहें कि वो अपने जो बाबा के नियम हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनमें बहुत फर्म थी, और दूसरी तरफ फिर दीदी जो है वो बहुत सरल भी थी।
शरीर से डिटैच होकर के और पूरा कनेक्शन बाबा के साथ, बस पूरा संबंध भी जुट जाता है ऑटोमेटिकली और कनेक्शन भी जुट जाते हैं। ये सब तब होता है जब मिठू बच के आप शरीर से अशरीरी बन करके और बाबा से मिल, तो उसी समय का जो मिलना है वो सारी दुनिया बहुत मदद करता है, लेकिन न सिर्फ नियम पूर्वक मिलना है लेकिन बिल्कुल जैसे उस अवस्था में ठहर यानी शरीर से अशरीर कभी भी आप ना मिंद नहीं होना, ये अभ्यास चलता है। फिर दूसरा पीरियड आया, क्लास में आकर के प्यारे बाप दादा के मधुर बोल सुने और वो सब मधुर बोल जो सुने वो मीठे मीठे जो महावाक्य है और साथ में डायरेक्शन मिलते हैं, कहीं फरमान मिलते हैं। एक ही मुरली से हम प्रकार का हम बच्चों को डायरेक्शन मिलते हैं, तो हर एक शब्द को फिजिकल श्रीमत समझ करके पालन करेंगे तो सारा ही दिन जैसे कर्म योग का पाठ बहुत ही
एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी उनके अंदर बहुत दृढ़ता थी, यानी कोई भी संकल्प उनके सफल न हो ऐसा कभी हो नहीं सकता था। और मुझे हमेशा कहती थी, देखो तुम सिद्धि स्वरूप आत्मा हो। जब मैं आती थी तो मैं उन्हें बता देती थी कि मुझे क्या क्या करना है, और जाते समय मुझे कहती थी अपना चार्ट ले आओ दिखाओ मुझे। तो जब मैं दिखाती थी तो कहती थी इसको कहते हैं सफलता मूर्त, तुम जो भी संकल्प करके आती हो मधुबन वो पूरा होने के बिना तुम नहीं जा सकती हो, तुम्हारे सब संकल्प बाबा पूरे करेगा। यानी मेरे आध्यात्मिक जीवन के अंदर दीदी जी ने बहुत महत्वपूर्ण पाठ यज्ञ के हर आत्मा के प्रति तो था ही था, पर तू मेरे से जैसे कि दीदी जी का विशेष स्नेह था। अब भी मैं जब बात कर रही हूँ तो मेरे सामने दीदी जी की वही सुंदर मूरत, वही मुस्कुराहट चेहरे पर, और दृष्टि में तो कमाल थी दीदी की। हमको दृष्टि में ये नहीं दिखता था कि दीदी दृष्टि दे रही है, और घंटे घंटे तक बैठकर स्टेज पर योग करवाती थी। जिसको अभी हम सकाश कहते हैं, उस समय हम उसको सकाश नहीं कहते थे, परंतु उनकी दृष्टि में कि जैसे मेरी आंख हिलेगी नहीं, जैसे वो दृष्टि दे रही है, मैं लेती जा रही हूँ, लेती जा रही हूँ, लेती जा रही हूँ। और देही अभिमानी स्थिति का जो मैंने अनुभव किया वो तब से, और जब भी अब मैं वो अभ्यास करना शुरू करती हूँ तो सबसे पहले बाबा को तो अवश्य हम सामने रखते ही हैं, पर तो अपनी आदरणीय दीदी मनमोहनी को भी सदियों में सामने रखती हूँ, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल बाप समान अपने जीवन को और हमें भी वैसी प्रेरणा दी कि हम भी अपना जीवन उनको देखते देखते दीदी के समान और बाप समान बन ही जाएंगे।
चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे जीवन की तुम तकदीर हो।
प्रेम दीप ने तुझको, प्रेम दीप ने तुझको ज्योति घर बुला लिया। बाबा बाबा रटने वाली, बाबा बाबा रटते मन को बाबा में बसा लिया। शांति सागर ने तुम्हें सागर बना दिया। छोड़ के देह के बंधन बाबा साथी बना लिया। शांति सागर ने तुम्हें सागर बना लिया। ओ मीठी दीदी मीठे मधुबन वाली, एक नजर से उड़ाने वाली, वतन की सैर कराने वाली, फिर मिलेंगे कब हम तुझसे, फिर मिलेंगे पाका प्यार तुझसे, ये तो बता जरा।
Thank you. कुंड की ज्योति से हर एक ज्योति को जगाए। चलेंगे होकर देह से न्योरे, चलेंगे होकर देह से न्योरे, साथ सभी को जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। घर जाना।